नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वस्त्र उद्योग से जुड़े पक्षों से पर्यावरण अनुकूल तकनीक के उपयोग की अपील की है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए अगले वर्ष तक लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में चिन्हित क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और चाणक्यपुर स्थित इंडिया अफ्रीका फ्रेंड्स पर रोज गार्डन में आज से वार्षिक शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी शुरू हुई। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वस्त्र उद्योग आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग भी है। आज नई दिल्ली में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह वस्त्र उद्योग में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।
India's apparel and textile sector journey, its craftsmanship, innovation, global achievements and the people who shaped it. Everything is being there. The book stands as a tribute to the enduring spirit of Indian textiles and their ever-expanding global footprint.
उपराष्ट्रपति ने इस उद्योग से जुड़े लोगों और संस्थाओं से पर्यावरण अनुकूल तथा कम प्रदूषण वाली तकनीकों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भारत सरकार के समर्थन से वस्त्र और परिधान क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि दिल्ली में नवंबर 2026 तक लगभग 7,000 और इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध होंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से डॉक्टर सिंह ने कहा कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाना है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार की नाकामी के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा, जिसे ठीक करने के लिए वर्तमान सरकार काम कर रही है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार तेज कर दी है, जिससे प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिल रही है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सिंह ने बताया कि बीते 10 महीने में 1,00,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है, जबकि पिछली सरकार के पूरे एक वर्ष में यह संख्या लगभग 80,000 रही थी। इस दौरान परिवहन मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में चलाए गए सघन अभियान के तहत 1,00,000 से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 19 दिसंबर को एक ही दिन में 47,000 से अधिक प्रमाण पत्र शामिल है।
1,00,000 प्लस ईवी व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुका है दिसंबर में। 20 तारीख की बात करूंगा तो ईवी 1,00,000 प्लस रजिस्टर्ड हो चुका है।
इस मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद अब तक 28 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य प्रदूषण को उसके स्रोत पर नियंत्रण करना और साथ ही नागरिकों को सुदृढ़ तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि दिल्ली स्वच्छ हवा और स्वस्थ भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी क्षेत्र के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी में वायु प्रदूषण के चिन्हित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री गुप्ता ने धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क की धूल से होने वाला वायु प्रदूषण एक चुनौती है, जिसके लिए सख्त जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने नियमित यांत्रिक सफाई, जल छिड़काव, सड़कों के पक्कीकरण और विद्यालयों तथा बाजारों में विशेष धूल नियंत्रण उपाय लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रक संस्थाओं को साप्ताहिक संयुक्त निरीक्षण करने और बेहतर तालमेल के लिए विधायक कार्यालय के अंतर्गत रोहिणी डस्ट एक्शन प्लान सेल के गठन का निर्देश दिया है। श्री गुप्ता ने क्षेत्र की सड़कों के स्थायी सुधार और हरित पट्टियों के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी और जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में बदलाव लाना है। श्री मोदी ने कहा कि यह विधेयक समाज कल्याण को विकसित और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की परिकल्पना के अनुरूप नवीनीकृत कर रहा है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस विधेयक पर लिखे लेख को साझा करते हुए ये बात कही। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि और किसान कल्याण विधेयक किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है और यह गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह बात आज नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समारोह में कही। श्री चौहान ने कहा कि उनका मंत्रालय आगामी बजट के लिए कृषि क्षेत्र संबंधी सुझाव आमंत्रित कर रहा है ताकि एक मजबूत प्रणाली तैयार की जा सके। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक में श्रमिकों के लिए 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है।
जी राम जी, इस बिल की काफी चर्चा हुई, उसके मूल में क्या है? किसान भाइयों, दो चीज। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे।
वस्त्र अनुसंधान संघ टीआरई की पहली समन्वय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक से पहले संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वस्त्र अनुसंधान के लिए कार्य करने वाले 9 संस्थान इस बैठक में भागीदारी कर रहे हैं।
आज टीआरए की बैठक है, ये बहुत पुरानी संस्था, पुराना कोऑर्डिनेशन है। आज इसमें 9 इंस्टीट्यूशन के लोग जुटे हैं जो टेक्सटाइल के लिए काम करते हैं, टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। दुनिया आज सस्टेनेबिलिटी की ओर जा रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नवनिर्मित दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। श्री नड्डा ने इस क्षेत्र के देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बातचीत की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि यह भवन मात्र एक ढांचा ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लोगों की साझा आकांक्षाओं और सामूहिक संकल्प का एक सशक्त प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 138 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आज दिल्ली आने वाली कई रेलगाड़ियों का संचालन भी अवरुद्ध हुआ है। 37 रेलगाड़ियां 2 घंटे से अधिक विलंब चल रही है। मौसम विभाग ने कल सुबह कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा और रात में हल्का कोहरा रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति को देखते हुए सभी विमानन कंपनियों को यात्री सुविधा संबंधी मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों को समय पर और सटीक उड़ान जानकारी सुनिश्चित करने, देरी की स्थिति में भोजन और जलपान की व्यवस्था कराने और उड़ान रद्द होने की स्थिति में दोबारा बुकिंग या धन वापसी की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा राजधानी में ड्रेनेज और नालों की सफाई से दिल्ली को नई पहचान मिल रही है। विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मौजपुर पुल, सीलमपुर, धोबी घाट और करावल नगर ड्रेन में निरंतर जल निकासी तथा सफाई का काम चल रहा है। इससे जल भराव की समस्या कम हो रही है और राजधानी की स्थिति बेहतर हो रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक नाइजीरियाई नागरिक भी है। इन आरोपियों के पास से 33 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इसके अलावा 13 नशीले इंजेक्शन, 32 नशीली गोलियां, 105 क्वार्टर अवैध शराब और 3.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह हिमाचल प्रदेश से दिल्ली एनसीआर तक सक्रिय था। आरोपियों के पास से 1.5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त दो लोगों को जनकपुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 किलो 68 ग्राम चरस, 272 ग्राम अन्य मादक पदार्थ और एक गाड़ी बरामद की गई है। राजधानी में चाणक्यपुरी स्थित इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में आज से 2 दिवसीय वार्षिक शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी शुरू हुई। एक रिपोर्ट।
ये प्रदर्शनी द रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आयोजित की गई है, जिसमें देश भर के 70 से अधिक तरह के गुलाबों की कारीगरी प्रदर्शित की गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कहा कि इस तरह के आयोजन नई दिल्ली को हरित, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट सिटी बनाने के परिषद के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि गुलाब की खेती कई शौकीनों के लिए जिंदगी भर का जुनून है, जो दशकों से अलग अलग तरह के गुलाबों की देखभाल करते हैं। प्रदर्शनी रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज प्रदेश सरकार के गवर्नमेंट ऑन व्हील अभियान के तहत जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बस से क्षेत्र का दौरा किया और कार्यों में कमियों की पहचान की। श्री सिंह ने कमियों के मामले में समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वे सड़कों और निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बल के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल का अटूट समर्पण सेवा और बलिदान की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ खड़े रहने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बल के जवान अदम्य साहस, निस्वार्थ समर्पण और सेवा, सुरक्षा तथा बंधुत्व के मूल मंत्र के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट के लिए नागरिकों से सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। बजट फरवरी में पेश किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देते हुए जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। सुझाव www.mygov.in पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। अब चलते चलते मौसम का हाल। राजधानी में आज सामान्य से अधिक ठंड रही और दिन भर धुंध छाई रही। आज का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजधानी में आज वायु गुणवत्ता बहुत खराब रही। शाम 7 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 407 दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने वस्त्र उद्योग से जुड़े पक्षों से पर्यावरण अनुकूल तकनीक के उपयोग की अपील की है। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए अगले वर्ष तक लगभग 7,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के चिन्हित क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और चाणक्यपुर स्थित इंडिया अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज गार्डन में आज से वार्षिक शीतकालीन गुलाब प्रदर्शनी शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।